सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा। राजा परीक्षित के विषय में तो आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं तो हम आपको बताते चलते हैं कि महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ उस समय कौरवों और पांडवों के वंश में कोई भी पुत्र नहीं बचा था, अर्थात कोई भी वंशज नहीं बचा था जो उनके वंश को आगे बढ़ा था। सिर्फ उत्तरा के गर्भ में एक शिशु थे। पांडवों के वंश को भी समाप्त करने के लिए गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा और दुर्योधन के प्रिय मित्र ने दुर्योधन की मृत्यु के बाद ब्रह्मास्त्र का मुख उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण को उत्तरा के गर्भ में उतरकर उस शिशु को बचाना पड़ा था और इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा था, जो कि कृष्ण के द्वारा ही दिया गया था। तो चलिए आगे की कथा सुनते हैं कि क्या हुआ इस राजा परीक्षित के साथ। पांडवों के वन में प्रस्थान करने के बाद परीक्षित ने ही सारा राजकाज संभाला था। एक बार क्या होता है कि राजा परीक्षित किसी तपस्वी ऋषि का अपमान कर देते हैं और वो ऋषिवत बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं तथा उन्हें सर्प दंश से मृत्यु का श्राप दे देते हैं, अर्थात वो उन्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें सर्प के डंक से ही मृत्यु प्राप्त होगी। बहुत सावधानियां रखने के बावजूद ऋषि वाणी अनुसार एक दिन फूलों की टोकरी में कीड़े के रूप में छुपे तक्षक नाग के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित के पुत्र थे जनमेजय, और जब परीक्षित के पुत्र जनमेजय अर्थात पांडव वंश के जो आखिरी राजा थे, उनको पता चलता है कि सांपों के राजा तक्षक नाग के काटने से उनके पिता की मृत्यु हो गई है, तो वे प्रतिशोध लेने का निश्चय करते हैं, अर्थात बदला लेने का निश्चय करते हैं। जनमेजय सर्प मेघ यज्ञ का आह्वान करते हैं, जिससे समस्त पृथ्वी के सांप एक के बाद एक हवन कुंड में आकर गिरने लगते हैं और भस्म होने लगते हैं। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में पड़ता देखकर जो तक्षक नाग हैं वो सूर्य देव के रथ पर जा लिपटता है। अब अगर तक्षक नाग हवन कुंड में जाता है तो उसके साथ सूर्य देव को भी हवन कुंड में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तक्षक नाग सूर्य देव के रथ से लिपटा हुआ है और इस दुर्घटना से सृष्टि की गति थम जाती, क्योंकि सूर्य देव का रथ जाता तो सूर्य देव भी उसी अग्नि में भस्म हो जाते। पिता की मृत्यु का बदला लेने की चाह में जनमेजय समस्त सर्प जाति का विनाश करने पर तुला हुआ था। उस समय वो कुछ भी सोच समझने की दशा में नहीं था, इसलिए देवगण उन्हें यज्ञ रोकने की सलाह देते हैं, परंतु वे किसी की भी बात नहीं मानते। अंत में अस्तिका मुनि, अर्थात उन्हें कहीं कहीं आस्तिक मुनि के नाम से भी जाना जाता है, वो हस्तक्षेप करते हैं, अर्थात बीच में आते हैं और जनमेजय को बहुत समझाते हैं तथा उन्हें इस बात के लिए मनाते हैं कि वे इस महाविनाशक यज्ञ को रोक दें। किसी प्रकार आस्तिक मुनि अपने कार्य में सफल हो जाते हैं और वो जनमेजय को समझा पाते हैं तथा वह यज्ञ को रोक देते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमारे द्वारा कोई बुरा कर्म किया जाता है तो हमें उसका फल भी भोगना पड़ता ही है, क्योंकि बुरे कर्म का फल मिलना अटल है, जैसा कि परीक्षित के साथ हुआ। परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन जाने अनजाने जैसे भी उनसे एक ऋषि का अपमान हुआ था। वो ऋषि तपस्या में लीन थे और उस वक्त परीक्षित को लगा कि मेरे राजा होने के नाते मेरे पूछने के बाद भी इस ऋषि ने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, तो वो वहीं पड़े हुए एक मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल देते हैं, जिससे उनकी तपस्या टूट जाती है और इसी कारण राजा परीक्षित को उस ऋषि के द्वारा श्राप दिया जाता है। तो अगर हमने कोई भी बुरा कृत्य किया है तो उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, किंतु परीक्षित के जो पुत्र थे जनमेजय वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो पूरी सर्प जाति का विनाश करने पर तुल जाते हैं, और जैसा कि वो करते भी हैं। तो इसलिए हमें इस बात को ज़रूर सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा भी किसी के साथ कुछ बुरा कृत्य अवश्य किया गया होगा। तो नीति को कोई नहीं डाल सकता, अर्थात जो होना है वो तो होकर रहेगा, उसे कोई भी अपनी तरफ से समाप्त नहीं कर सकता। और ये भी कहा जाता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग का इतना साहस हुआ था कि वो इस पृथ्वी लोक पर अवतरण कर पाया था। सो बच्चों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम किसी के साथ बुरा करने चलें तो इस बात को अवश्य सोचें कि वो ब्याज के साथ लगकर हमारे साथ आता है। जिस प्रकार हमारे अच्छे कर्म भी 4 गुना 10 गुना होकर वापस लौटते हैं, उसी प्रकार बुरे कर्म भी कई गुना होकर हमारे पास वापस लौटते हैं। तो सभी के साथ अच्छा कृत्य कीजिए, जिससे आपके साथ भी कभी कुछ बुरा घटित ना हो। हमारे पुराणों में अभी तक भी ऐसी मान्यता है कि अगर हमें आज भी कोई सर्प दिखाई दे और हम उसे मारना ना चाहें, लेकिन उसे देखते ही हम जय श्री आस्तिक मुनि, जय श्री आस्तिक मुनि इस मंत्र का जाप आरंभ कर दे तो वह अपने आप ही लुप्त हो जाता है। ये माना जाता है कि सर्प जाति आज तक भी आस्तिक मुनि का एहसान मानते हैं, इस बात का कि उन्होंने उन्हें उस वक्त बचाया था, उनकी जाति को संरक्षित किया था, तो उनका वो आज तक भी सम्मान करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जानते, पर चलिए आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।